समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मिठास और ढेर सारी एनर्जी के साथ। दोस्तों, आज की सुबह एक नया पन्ना है हर दिन की तरह। कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और आज क्या करना है उस पर मुस्कुराइए। कहते हैं ना कि अगर दिन की पहली चाय कड़क और मुस्कुराहट सच्ची हो तो दिन अपने आप बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए अपनी खिड़की के पर्दे खोलिए, ताजी हवा अंदर आने दीजिए और हमारे साथ नए दिन का स्वागत कीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और सुभद्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल यू लवली फोक्स ट्यून्ड इन टू अस फॉर अ सेशन ऑफ आज सवेरे। Get ready to enjoy this bundle of information and entertainment and much more. So Jaya, let's start off right away with some news headlines.
बिल्कुल, और आज की जो सबसे पहली सुर्खी है हम पश्चिम बंगाल से शुरू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में 92.4% मतदान हुआ है। यह आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। राज्य में 6,81,00,000 मतदाता हैं। मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 92.28% था, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 91.07% था। अब तक सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड त्रिपुरा का है, जहां 2013 के विधानसभा चुनाव में 93.6% मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को होगी। कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी मतगणना की जाएगी। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा के विस्तार मार्ग को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू और श्रीनगर के बीच नियमित रेल सेवा शनिवार से शुरू होगी। ये रेलगाड़ी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जम्मू से कश्मीर घाटी तक चलने वाली यह वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। सर्दियों के मौसम और पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को खास तौर पर तैयार किया गया है, ताकि 0 से नीचे तापमान में भी आसानी से चल सके। जम्मू से श्रीनगर तक का यह सफर 5 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी, और अब इस ट्रेन का विस्तार जम्मू तक किया जा रहा है। इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे खूबसूरत स्थानों तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। पहाड़ों, सुरंगों और खूबसूरत वादियों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन न सिर्फ सफर को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ्तार देगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, जम्मू।
Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has said India is advancing a roadmap to add 62 vessels in the financial year 2026-27, backed by an investment of over 51,000 crore rupees. Chairing a high-level inter-ministerial review meeting in New Delhi yesterday regarding the Strait of Hormuz, Mr. Sonowal called for urgent expansion of country's shipping capacity to strengthen resilience against external disruptions. He also reviewed the joint venture between the Shipping Corporation of India and Oil Public Sector Undertakings to acquire 59 vessels. Mr. Sonowal reiterated that the safety and security of Indian seafarers remains a top priority for the government.
गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा करेंगे।
Tensions between Washington and Tehran continue to escalate, with the White House signaling that it is prepared to sustain a naval blockade of Iranian ports for an extended period. This comes amid financial costs to the United States crossing $25 billion, as assessed by the Pentagon. President Donald Trump issued a blunt warning to Iran on social media, saying, "No deal if Tehran's nuclear weapons pursuit continues." He said Iran talks are now telephonic amid stalled peace talks. The latest developments point to a widening deadlock. Washington continues to insist that Iran's nuclear program must be part of any ceasefire framework, while Tehran has refused to negotiate under pressure. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Mumbai Indians by 6 wickets at Wankhede Stadium last night. Chasing a target of 244 runs, Sunrisers Hyderabad scored 249 for 4 in 18.2 overs. Earlier, winning the toss, Mumbai Indians opted to bat and score 243 for 5 in stipulated 20 overs. Today, Gujarat Titans will meet Royal Challengers Bengaluru at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m.
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों से। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने गेहूं खरीद की गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत अब गेहूं में चमक की कमी को 70% तक स्वीकार किया जाएगा। साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया है। एक और खबर है दिल्ली से कि दिल्ली नगर निगम में महापौर और उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 53 रोहिणी ई से पार्षद प्रवेश वाही ने महापौर पद पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 206 आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत ने उप महापौर पद पर विजय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वाही और मोनिका पंत को जीत के लिए शुभकामनाएं दी।
Now getting to metro news from Chennai, the India's Climate and Energy Frontiers report prepared by Schmidt Sciences with Indian Institute of Technology Madras has said that stronger industrial policy will be critical for India's low carbon growth. The report pointed out a well-formulated industrial policy can help in creating employment in the sunrise sector, such as solar equipment manufacturing, battery storage, green hydrogen and electric mobility. It said India has focused more on renewable deployment than industrial development, while continuing to depend heavily on imports on clean energy components, including 80% of its solar module components and lithium-ion cells, which mostly come from China. According to the report, states such as Tamil Nadu and Gujarat are leveraging industrial policy to attract clean energy in investments and could serve as models. Over to you now, Jaya.
बिल्कुल, और अब चलते हैं मुंबई मेट्रो की तरफ। वहां की खबर अगर हम देखें तो मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल रेलगाड़ियों में कल से अतिरिक्त वातानुकूलित यानी कि ये एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल रेलवे सीएसएमटी पनवेल हार्बर लाइन और पर चलने वाली और 14 गैर वातानुकूलित ट्रेन को एसी ट्रेन में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे एसी ट्रेन की कुल संख्या 108 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे 12 नई वातानुकूलित रेलगाड़ियां शुरू करेगा और 17 रेलगाड़ियों पर 12 से 15 डिब्बों को अपग्रेड करेगा, यानी कि 12 से इस डिब्बे को 15 डिब्बे में अपग्रेड किया जाएगा। महाराष्ट्र से एक और खबर है, क्योंकि कल महाराष्ट्र दिवस मनाया जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर 12 नए डायलिसिस केंद्रों का उद्घाटन करके अपनी महा डायलिसिस योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। यह योजना सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होता है। नए केंद्रों के जुड़ने से राज्यभर में केंद्रों की कुल संख्या 92 से बढ़कर 104 हो जाएगी। और राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में कल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया है। उप सचिव चंद्रकांत मोरे ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान और राज्य गीत भी प्रस्तुत किए गए।
And getting to Bengaluru now, 7 people died in Bengaluru after a compound wall at Boring Hospital collapsed during heavy rain, hail, lightning and strong winds, the state chief minister announced rupees 5 lakh compensation for each to the family of the deceased. The storm caused major disruption across the city. Fallen tree branches and waterlogging led to traffic problems. Metro services slowed down, creating long wait times and crowded stations with many commuters stranded. The city recorded 78 mm of rain in the evening. More moderate rain, thunderstorms and gusty winds of 30 and to 40 kilometers per hour are expected tomorrow. And Jaya, what do you have now?
अब हमारे पास कोलकाता की खबर है, जिसे जॉय सिटी के नाम से भी जानते हैं. तो पश्चिम बंगाल में अभी हमने चुनाव की भी बात की, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है, यह घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं. कल शाम कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जान माल की हानि की कोई भी खबर नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान एजेंटों को जबरन हटाने, बूथों पर भीड़ भाड़ या मतदाताओं को डराने धमकाने की भी कोई घटना सामने नहीं आई है. हालांकि ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्याओं सहित 77 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 23 की पुष्टि हो चुकी है. अधिकांश शिकायतें फाल्टा, मगराहट, डायमंड हार्बर और बजबस से आई. कुछ बूथों पर संभावित पुनर्मतदान पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
Getting to Hyderabad now, Telangana government has taken full control of Hyderabad Metro Rail from L&T. A deal was signed in Hyderabad where the government, through Hyderabad Metro Rail Limited, HMRL, bought 100% shares of L&T Metro Rail Hyderabad Limited for ₹1461.47 crore. As part of the agreement, the metro's debt of ₹13,538.53 crore will now be refinanced with a state government guarantee. Officials from the government and L&T attended the signing. Hyderabad Metro has been operated by L&T since 2017 and covers 69 kilometers across three corridors. Around 4.5 lakh people use it daily. And before the takeover, L&T Chairman S.N. Subramanian met Chief Minister A. Revanth Reddy.
So, ye the ab tak ke Metro Samachar. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और सुभद्रा के साथ. तो कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की. तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ तूफान का अनुमान है. शहर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुभद्रा, कल भी बारिश हुई थी.
Yes, and you're already wearing a shawl here.
मौसम में थोड़ी सी ताजगी है, ठंडी हवाएं चल रही है.
Yes.
तो अभी उम्मीद है कि और भी राहत मिल सकती है लोगों को. उधर मुंबई में भी आज मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और अगर हम कोलकाता की बात करें तो आज वहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम या गरज या चमक के साथ बारिश की संभावना है. आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. तो कोलकाता में भी अभी राहत मिली है लोगों को गर्मी से.
Yes, of course.
और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल.
Yes, Chennai is expected to have partly cloudy sky today. The minimum temperature will be around 29 degrees Celsius. Maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected rain or thundershowers this afternoon or in the evening. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius. And friends, it's going to be a great day today. Mm-hmm. And you do know why, Jaya? Friend, this is for all music lovers today, the ones who are tuned in today and the others also. All over the world, they come together today to observe International Jazz Day. In November 2011, UNESCO proclaimed 30 April as International Jazz Day, recognizing jazz as a force for dialogue, diversity and peace. Yes, friends, the story of jazz is written into the quest for human dignity, democracy and civil rights. It has given strength to the struggle against discrimination and racism. International Jazz Day will celebrate its 15th anniversary in more than 190 countries today around the world. Chicago, United States of America, will host this year's All-Star Global Concert, featuring a record number of artists including Dee Bridgewater, Jacob Collier, Kurt Elling, Renee Fleming, Herbie Hancock, Marcus Miller, and many more.
तो अभी ये वक्त है अपग्रेड होने का, जैसा कि आपने बताया.
Yes,
और अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को भी याद करने का. तो हम बात करते हैं हिस्ट्री की, और आज के दिन की बात करेंगे, उन घटनाओं की बात करेंगे जिसने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की है. तो शुरुआत करते हैं पहले.
Yes, 1789, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिस डे. एंड 1859, Charles Dickens' A Tale of Two Cities is first published in literary periodical All the Year Round in weekly installments until the month of November that year. And 1897, English physicist J.J. Thomson announced his discovery of electron in a lecture to the Royal Institution. And 1945, German dictator Adolf Hitler and his wife Eva Braun committed suicide one day after they were married, just before the Russian troops entered his Berlin bunker at the end of World War the Second.
बिल्कुल सुभद्रा. और इसके कुछ दिनों के बाद की बात करें, 1985 में आज ही के दिन एक अमेरिकी पर्वतारोही जिनका नाम था रिचर्ड डिक बास, उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और सबसे अधिक उम्र के चढ़ने वाले व्यक्ति बने माउंट एवरेस्ट पर. और वर्ष 2007 में नेत्रहीन पायलट जो कि ब्लाइंड थे, उन्होंने, उनका नाम था माइल्स हिल्टन, उन्होंने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था आज ही के दिन. और वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे, उन्होंने विशेष चॉकिंग फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था, और उन्होंने ऊंचाइयों और जो दिशा की जानकारी जो बोल कर बताते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का. और इसका मुख्य उद्देश्य था कि विकासशील देशों में जो रोकी जा रही वाली अंधता होती है ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसके खिलाफ चैरिटी उनको जुटाना था. और इसके बाद 2008 में, यानी कि आज ही के दिन, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर जिले से भी चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया था.
एंड जया, यू नो व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2013? यू हैव टू गेस इट. यस फ्रेंड्स, राजेश खन्ना वाज ऑफिशियली बेस्टोर्ड विद द टाइटल The first superstar of Indian cinema at the Dada Saheb Phalke Academy Awards on April 30, 2013. And of course, friends, this was a posthumous honor for his unmatched contribution to Indian cinema, recognizing his stardom, which included a record 15 consecutive solo hits between 1969 and 1971.
कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा.
बिल्कुल सही कहा, 30 अप्रैल का दिन भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए एक बेहद खास पहचान लेकर आया था. और इसी दिन उन्हें आधिकारिक तौर पर एक ऐसी उपाधि दी गई जो उनके व्यक्तित्व का पर्याय बन गई. तो सुनते हैं उनका एक डायलॉग.
जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं दोस्त? बाबू शाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया नहीं तो फिर डर किस बात का.
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं सरदार हरि सिंह नवाला को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. वे महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के सबसे पराक्रमी और विश्वसनीय सेनापति थे.
हरी सिंह
उन्हें दुनिया के इतिहास के सबसे महान युद्ध जनरलों में गिना जाता है, जिन्होंने अफगानों को उनके ही घर में घुसकर धूल चटाई थी। अफगानिस्तान में उनका डर इतना था कि वहाँ की माएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा, जैसे हम गब्बर के बारे में सुनते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 20 से अधिक महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और लगभग सभी में जीत हासिल की। सिख फौज के सबसे बड़े जनरल हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया, और यही नहीं काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले इस्लामिक आक्रमणों से देश को मुक्त किया। 1831 में जैमरौद की जंग में लड़ते हुए वे शहीद हो गए। नौशेरा के युद्ध में भी हरि सिंह नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना का कुशल नेतृत्व किया था।
And friends, today is the birth anniversary of Swiss psychiatrist Eugen Bleuler, who made notable contributions to the understanding of mental illness and coined the term schizophrenia. This happened in the year 1908 for the disorder previously named as dementia praecox. Eugen was born this day in 1857. Jack J. Leedy, American psychiatrist, was known as the father of poetry therapy, was born this day in 1921. He popularized using poetry as a viable natural healing power for the mind. One method is to read poems to a patient or have the patient read them, followed by discussions about the poem, which can lead to talking about themselves. Another technique is to encourage patients, you know, to write poetry, which can bring out hidden emotions. Leedy founded the National Association for Poetry Therapy in 1969, served as its president, and influenced professionals worldwide. He wrote Poetry Therapy, the Use of Poetry in the Treatment of Emotional Disorders, 1969, and Poetry as a Healer, Mending the Troubled Mind, in 1973.
हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रहे ऋषि कपूर को। आज उनकी पुण्यतिथि है। कपूर खानदान में जन्मे ऋषि कपूर शोमैन राज कपूर के बेटे थे, जिन्हें सबको पता है। उन्होंने अभिनय की शुरुआत अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी, एक बाल कलाकार के रूप में, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तो सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत, जो आज भी लोग अक्सर गाते हैं। करियर की कई प्रसिद्ध फिल्में हैं। अगर हम अमर अकबर अंथोनी की बात कर ले, लैला मजनू, कर्ज या फिर बोल राधा बोल, तो बहुत सारी फिल्में हैं, अभी गिना नहीं जा सकता है। सुनते हैं फिल्म कर्ज का यह गीत, जो उनके करियर के सबसे प्रतिष्ठित गानों में से एक है।
इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ।
तो सुनते हैं एक और गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं है से, और किशोर कुमार की आवाज और ऋषि कपूर का डांस आज भी पार्टियों की जान है।
छना ए हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, है बचना ऐ हसीनो।
ऋषि कपूर पर ऐसे कई सदाबहार, सुरेले और यादगार गीत फिल्माए गए हैं, जिसकी गिनती करना भी मुश्किल है। तो उन्हीं में से एक गीत ये भी है।
तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा।
Tributes to mathematician George Robert Stibitz, who was regarded by many as father of modern digital computer. While serving as a research mathematician at Bell Telephone Laboratories in New York City, Stibitz worked on relay switching equipment used in telephone networks. In 1940, he gave a demonstration of the first remote operation of a computer. April 30 is a day to salute Muddy Waters by name McKinley Morganfield, dynamic American blues guitarist and singer who played a major role in creating the post-World War II electric blues. He taught himself to play harmonica as a child, took up guitar at age 17. He eagerly absorbed the classic Delta blues style of Robert Johnson, Son House, and others while developing a style of his own. A major influence on a variety of rock musicians, most notably the Rolling Stones, who took their name from his song Rolling Stone. They are actually singing right now. The Rolling Stones are playing with him here. Rockabilly country singer guitarist Johnny Horton was born this day. This music usually encompasses folk ballads based on American historic themes and legends. His 1959 single, The Battle of New Orleans, was awarded the 1960 Grammy Award for Best Country and Western Recording. Decades later, the song was awarded the Grammy Hall of Fame Award, and in 2001, the song ranked number 333 of the Recording Industry Association of America's Songs of the Century.
We look down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton fields, didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more.
हम याद कर रहे हैं ढूंढी राज गोविंद फाल्के को, जिन्हें दुनिया दादा साहेब फाल्के के नाम से जानती है और भारतीय सिनेमा का पितामह मानती है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दादा साहेब फाल्के की आज जयंती है। दादा साहेब ने न केवल भारत की पहली फिल्म बनाई बल्कि उस मनोरंजन उद्योग की नींव भी रखी जो आज दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। यह एक मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट फिल्म थी, जिसकी शूटिंग मुंबई के दादर में हुई थी। उस समय महिलाओं को फिल्मों में काम करना वर्जित था, ऐसे में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र में रानी तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष कलाकार सालुंके को चुना था। और अपने 19 साल के करियर में उन्होंने 95 फीचर फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई और उनकी एकमात्र बोलती फिल्म गंगावतरण 1937 में आई थी। 1969 में दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने उनकी याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है।
And friends, today's birth anniversary tributes to singer-songwriter Bobby V, one of the longest, lasting teen idols of the early 60s. Bobby V got his lucky break when he and his band The Shadows filled in for the late Buddy Holly at a 1959 Mason City, Iowa concert days after Holly was killed in a plane crash. Shadows later became a backing band for Cliff Richard, but Bobby V continued recording solo. Here's a big...
आज ही जयंती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी की। फातिमा बीबी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। उनका जन्म केरल के पत्तन मतिट्टा में हुआ था और उन्होंने पहले रसायन विज्ञान में स्नातक की, फिर कानून की पढ़ाई की। भारत सरकार ने उन्हें 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें केरल सरकार द्वारा केरल प्रभा पुरस्कार भी दिया गया था।
And friends, you know, he's nicknamed the Hitman for his sixers. Happy birthday to premier Indian international cricketer and former captain Rohit Sharma, who holds a record for the highest individual ODI score of 264 and captaining Mumbai Indians to 5 IPL titles. In 2024, Rohit led India to victory in the T20I World Cup also.
और जब खिलाड़ियों की बात करी रहे हैं तो बता दें कि आज पुण्यतिथि है भारत के फुटबॉल खिलाड़ी चुनी गोस्वामी की, जिनका नाम भारतीय फुटबॉल के इतिहास में बहुत इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था भारतीय के लिए और एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। तो श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सुभद्रा रामचंद्रन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।